अभिमन्यु कॉलेज गेट के पास ही खड़ा हो गया। उसने थोड़ी दूर पर ग्राउंड के किनारे इप्सित और नंदिनी को एक लड़के से बात करते हुए देखा था, इसलिए वो अपनी कार के पास ही रुक गया। इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं, तुमने हमारे साथ ही अपना करियर शुरू किया था अपना पैशन फॉलो करते हुए, लेकिन हम क्या करें, हमारे माता पिता ने हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा है। ध्रुव ने कहा, लेकिन ईशु तुम अपने माता पिता को मना सकती हो, उन्हें बताओ कि ये तुम्हारा सपना है, शायद वे तुम्हारी शादी की तारीख आगे बढ़ा दें, तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने के लिए दबाव ना डालें। नंदिनी ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ध्रुव तुम बेकार की बहस कर रहे हो, इप्सिता से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैंने इप्सिता के घर वालों को देखा है, वे उसकी बात नहीं सुनते, और तुम शायद भूल रहे हो, इप्सिता एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसकी फैमिली में ऐसा ही होता है, राज परिवार और फैमिली की इज्जत के लिए उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और ईशु इस समय जिस स्थिति में है उसे अपनी फैमिली के लिए अपने सपने का गला घोटना पड़ रहा है। इप्सिता कुछ नहीं बोली, उसने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह गॉड, लेकिन मैं अब क्या करूंगा, अगर तुमने फोटोशूट नहीं किया तो मैं पिक्चर्स कैसे सबमिट कर पाऊंगा, और अब तो लास्ट डेट भी आने वाली है, यार ईशु प्लीज कुछ तो करो, एक बार बस मेरा ये फोटोशूट कंप्लीट हो जाए, फिर अपने सिलेक्शन के बाद दूसरी कोई मॉडल ढूंढ लूंगा, प्लीज इस तरह से बीच रास्ते में मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे पता है ये तुम्हारा ड्रीम है, लेकिन मेरे लिए फोटोग्राफी मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है, और तुम जानती हो अगर अभी मैंने अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया तो शायद फिर कभी नहीं दे पाऊंगा, और मेरे पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं है, मैं अपने करियर के इस समय पर हार नहीं मान सकता, प्लीज ईशु इस समय मेरा साथ मत छोड़ो, शुरुआत में मैंने तुम्हारी फोटोज ही सबमिट की हैं, अब बीच में अगर मैं मॉडल बदलूंगा तो वो काफी अनप्रोफेशनल होगा और उसकी वजह से मैं रिजेक्ट भी हो सकता हूँ, फिर कोई भी मॉडलिंग फोटोशूट एजेंसी मुझे हायर नहीं करेगी, मैंने कई जगह पर अप्लाई किया हुआ है, सिर्फ तुम्हारी फोटोज की वजह से ही मुझे ये चांस मिल रहा है, इसलिए प्लीज एक दिन दो घंटे का समय निकालकर तुम मेरे साथ ये शूट कर लो और हम फटाफट परफेक्ट पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। इप्सिता चुप थी, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। ध्रुव ने इप्सिता के चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ईशु क्या सोचने लगी हो, सुन रही हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। इप्सिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये फोटोशूट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अगर हम तुम्हारे साथ मॉडलिंग में अपना करियर बनाना भी चाहें तो भी नहीं बन सकता, तुम नहीं जानते हमारी फैमिली कितनी पावरफुल है, उनसे लड़कर हम एक दिन के लिए भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी फैमिली में से कोई भी हमारे ड्रीम को सपोर्ट नहीं करेगा, और अब जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या लगता है हम अपने ससुराल से यहाँ शूटिंग के लिए आ पाएंगे। ध्रुव ने कहा, यार ईशु मुझे पता है तू अभी शादी करना नहीं चाहती और तेरे लिए तेरा सपना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्यों कर रही है तू ये शादी। इप्सिता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बहुत बड़ा सपना था हमारा, हम अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे, एक ऐसी मॉडल बनना चाहते थे जो मिनी स्कर्ट और शॉर्ट ड्रेस के अलावा ट्रेडिशनल और लॉन्ग वेयर पहनकर भी फेमस हो सकती है, हम इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहते थे और शायद हमने एक बहुत ही बड़ा सपना देख लिया जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता। आई एम सॉरी ध्रुव, हम अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद ही बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। वो काफी उदास हो गया। नंदिनी ने कहा, ध्रुव प्लीज यार तू अपसेट मत हो, मैं तेरे लिए कोई दूसरी मॉडल ढूंढने में हेल्प कर दूंगी। ध्रुव ने कहा, कोई ऐसी मॉडल जो मेरे अकॉर्डिंग पोज कर पाए, ऐसी मॉडल मिलना इम्पॉसिबल है। ईशु तुम शादी कब कर रही हो, एक बार तुम शादी करने के बाद अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात करके देखो, शायद वे तुम्हें मॉडलिंग की परमिशन दे दें या फिर तुम्हारे पति। इप्सिता अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने लगी, उसके चेहरे के सामने अभिमन्यु और माँ का चेहरा आया। नंदिनी ने कहा, हो ही नहीं सकता, भूल जाओ, इप्सिता के ससुराल वाले तो उसके घर वालों से भी दो कदम आगे हैं, वे तो राजस्थान की रॉयल फैमिली है, वहाँ तो मॉडलिंग शब्द का नाम लेना भी मुश्किल होगा शायद। ध्रुव ने इप्सिता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने सीरियस होते हुए कहा, मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, है ना। इप्सिता कुछ सोचने लगी। वहीं अभिमन्यु जो इतनी देर से दूर खड़ा था अब इप्सिता और नंदिनी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचने वाला था उसके कान में इप्सिता की आवाज़ आई। इप्सिता ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, सच बताऊं तो हम अभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, फैमिली के प्रेशर में आकर हमें ये शादी करनी पड़ रही है और शादी से इनकार करने का हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अभिमन्यु वहीं रुक गया, उसने इप्सिता और नंदिनी के पास जाना सही नहीं समझा और वापस अपनी कार के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, हम जानते हैं इप्सिता आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, हम भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, काश हम आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर पाते लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते। अभिमन्यु मायूस हो गया था। इप्सिता नंदिनी के साथ ध्रुव से बात कर रही थी। ध्रुव ने कहा, यार प्लीज़ कोई तो रास्ता होगा ना,
प्लीज कुछ तो सोचो, मेरी इतनी हेल्प कर दो, बस मेरा ये प्रोजेक्ट एक बार क्लियर हो जाए फिर मैं आगे सब कुछ हैंडल कर लूंगा, कोई और दूसरी मॉडल भी ढूंढ लूंगा। मुझे पता है तुमसे बेहतर और परफेक्ट मॉडल तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा क्योंकि अपना करियर तो मुझे कंटिन्यू करना ही है। मेरी कोई राजकुमार से शादी नहीं होने वाली है, नंदिनी ने मजाक में कहा। कोई बात नहीं, तेरे लिए राजकुमारी ढूंढ देंगे। नंदिनी अपने मजाक पर खुद ही हंसने लगी। इप्सिता और ध्रुव दोनों ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। ध्रुव ने फिर से कहा, प्लीज प्लीज ईशु, मुझे पता है अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज हमारी दोस्ती के खातिर। अभी तुम यहाँ हो तो सिर्फ 2-3 घंटे का समय निकाल लो, 2-3 घंटे इनफ होंगे मेरे लिए। इप्सिता को समझ आ रहा था कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, वो इस बार उसे सीधे मना नहीं कर पाई। इप्सिता ने सोचते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, हम सोचते हैं कुछ ना कुछ। ध्रुव खुश हो गया, थैंक यू सो मच यार, मुझे पता था तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। नंदिनी कन्फ्यूज हो गई, उसने सोचा ये इशू क्या बोल रही है, कैसे हेल्प करेगी वो ध्रुव की। ध्रुव बोल ही रही थी कि ध्रुव ने नंदिनी को साइड हक करते हुए कहा, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। नंदिनी ने उसे अलविदा कहा। फिर वो इप्सिता के पास आया, उसने उसे भी साइड हक करते हुए कहा, ओके फिर जैसा हो तुम मुझे कॉल करके बता देना। इप्सिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है हम तुम्हें शाम तक कन्फर्म बता देंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ध्रुव खुश हो गया और वहां से चला गया। अभिमन्यु ने इप्सिता और ध्रुव को हक करते हुए देख लिया, लेकिन वो ध्रुव का चेहरा नहीं देख पाया। उसे सामने खड़ी इप्सिता और नंदिनी का चेहरा नजर आ रहा था और ध्रुव की पीठ उसकी तरफ थी। उसने सोचा ये लड़का आखिर कौन है जो इप्सिता के इतने ज्यादा करीब है कि उसने उन्हें इस तरह सबके सामने गले लगा लिया। अभिमन्यु के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। इप्सिता ने उससे कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती है।
उसने सोचा कहीं इप्सिता की शादी ना करने के फैसले के पीछे यही वजह तो नहीं है, क्या ये दोनों? नहीं नहीं, हम ये क्या सोच रहे हैं, दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं और मुंबई में तो आम बात है दोस्तों का इस तरह एक दूसरे को गले लगाना। अभिमन्यु चुप हो गया, पूरी बात जाने बिना वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था और इप्सिता पर बेवजह शक भी नहीं करना चाहता था। उसने बाहर की तरफ जाती हुई इप्सिता और नंदिनी को देखा।